ये आकाशवाणी है। अब आप अंजलि से समाचार सुनिए। बांग्लादेश में अशांति के बीच भारत अपने राजनयिकों के माध्यम से वहां भारतीय नागरिकों के लगातार संपर्क में है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों में अपने वक्तव्य में कहा कि इस समय करीब 19,000 भारतीय नागरिक बांग्लादेश में हैं, जिनमें 9,000 विद्यार्थी हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि ढाका में भारतीय उच्चायोग की सलाह पर पिछले महीने ही बड़ी संख्या में छात्र भारत लौट आए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल को भी सतर्क रहने को कहा गया है। विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि श्रीमती हसीना ने भारत आने की मंजूरी मांगी थी और वो कल शाम दिल्ली पहुंची। श्री जयशंकर ने कहा कि पिछले 24 घंटों से हम ढाका में अधिकारियों के साथ भी नियमित संपर्क में हैं। बांग्लादेश में भारत की राजनयिक उपस्थिति पर उन्होंने बताया कि ढाका में उच्चायोग के अलावा चटगांव, राजशाही, खुलना और सिलहट में सहायक उच्चायोग हैं। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश सरकार से अपेक्षा करता है कि वो इन प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यक सुरक्षा संरक्षण प्रदान करेगी और हालात स्थिर होने पर सामान्य कामकाज की आशा करता है। इससे पहले सरकार आज सुबह बांग्लादेश की स्थिति पर विचार विमर्श के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेताओं को बांग्लादेश के ताजा घटनाक्रम की जानकारी दी। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में सर्वदलीय बैठक में मिली सर्वसम्मति और समर्थन की सराहना की। बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने राष्ट्रीय संसद भंग कर दी है और कहा है कि जल्द ही आंतरिक सरकार का गठन किया जाएगा। इसके अलावा सेना ने वरिष्ठ रैंकों में बड़ा फेर बदल किया है। मेजर जनरल जियाउल एहसन को उनके पद से मुक्त कर दिया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल एम सैफुल इस्लाम को विदेश मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस बीच राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के बीच एक बैठक के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया को कई राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ नजरबंदी से रिहा कर दिया गया है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी बांग्लादेश से लगे संवेदनशील सीमा क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर इन क्षेत्रों में बल के जवानों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। श्री चौधरी ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के पेट्रापोल में आवर्जन विभाग के अधिकारियों से बातचीत की। इससे पहले श्री चौधरी ने पेट्रापोल में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ बैठक की और बाद में बेनापोल और पेट्रापोल सीमा क्षेत्रों के बीच शून्य बिंदु का दौरा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी की राजधानी सुवा में अपने आधिकारिक कार्यक्रम के बाद नाडी शहर के लिए रवाना हो गई हैं। दिन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजधानी सुवा में फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियामे मैवलीली काटोनिवेरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वार्ता के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने फिजी के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है और कहा कि यह हर भारतीय के लिए बेहद गर्व और खुशी का क्षण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पुरस्कार राष्ट्रपति मुर्मू के नेतृत्व के साथ साथ दोनों देशों के लोगों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव का भी प्रतीक है। अमरीका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद की औपचारिक उम्मीदवारी मिल गई है। किसी प्रमुख राजनीतिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का नामांकन प्राप्त करने वाली वे पहली भारतीय अमरीकी हैं। कमला हैरिस ने आज मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल महिला कुश्ती में विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में स्थान पक्का कर लिया है। उन्होंने यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को 7-5 से हराया। सेमीफाइनल मुकाबला आज रात लगभग 10:25 पर खेला जाएगा। भाला फेंक में टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने क्वालिफिकेशन राउंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए 89.34 मीटर भाला फेंक कर फाइनल में जगह पक्की की। किशोर जेना क्वालिफिकेशन राउंड में बाहर हो गए हैं। भारत की पुरुष हॉकी टीम का सामना आज सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन जर्मनी से होगा। भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 ये मैच शुरू होगा। मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल से प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।